ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கலாசாசனக்கு பஞ்சம பீட்டாதீஸ்வர் பிரம்மலீன சுவாமி பிரேம்புரி மகாராஜிக்கு சத் சங்கல்ப சே ஸ்தாபித अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम है उपनिषद ज्ञान यज्ञ बृहदारण्यक उपनिषद ज्ञान यज्ञ. यह प्रस्थान त्रय ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत है, श्रुति प्रस्थान में है. श्रुति प्रस्थान में द्वादश उपनिषद है, दस उपनिषद है. दस उपनिषद में से अभी प्रातः बृहदारण्यक उपनिषद, शाम को प्रातः चांदोग्य उपनिषद और सायंकाल में बृहदारण्यक उपनिषद. उद्गीत उपासना का प्रारंभ हुआ. उद्गीत ओम इति तदक्षरम उद्गीतम उपासित प्रारंभ हुआ. अनेक गुणयुक्त उदित ओंकार का उपासना है. उद्गीत है ओंकार को उद्गीत कहा गया. उद्गीत एक नाम है, शाम का एक भाग का नाम है. शाम का भाग पांच भाग आगे आएगा. सात भाग वाले शाम है, पंचभक्ति के विषाम है. एक तृतीय भाग है उद्गीत, उसी उद्गीत में ओंकार है. उद्गीत के अवयव ओंकार को उद्गीत शब्द से कहा गया. जैसे पट के एक अंश जल गया तो पटो दग्ध, एक अंश में अवयविवाचक शब्द प्रयोग होता है. इसे शाम के अवयव उद्गीत, उद्गीत के एक अवयव ओंकार होने से उसी ओंकार को भी उद्गीत शब्द से कहा गया. उसी ओंकार की उपासना. ओंकार है परब्रह्म का वाचक है, नाम और प्रतीक है. सबसे प्रियतम नाम है ओंकार परब्रह्म का, और अत्यंत समीपस्थ वह है प्रतीक है. उसकी उपासना अभी उद्गीत अक्षर की उपासना है. उद्गीत हो गया ओंकार, उसका जो नाम हुआ उद्गीत, उसे नाम में जो अक्षर है उद्गी और थ, इनके संबंधी उपासना. नाम की पूजा हो तो नामी की भी पूजा हो जाती है. जिनके नाम है, नाम कहने से नाम का भी कोई अर्थ होता है. इस नाम का अर्थ जो विचार करते हैं, और नाम का अर्थ इतने श्रेष्ठ होता है, जिनका ये नाम है वो कितने श्रेष्ठ है. तो नामी की पूजा, नाम की पूजा और स्तुति से हो जाती है. इसी प्रकार यहाँ उद्गीत है ओंकार, जो ओंकार परब्रह्म का नाम वाचक है और परब्रह्म का प्रतीक है. उसको जो उद्गीत शब्द से कहा गया, उस उद्गीत में जो अक्षर है उसकी उपासना भी कहते हैं. अथ खलु उद्गीताक्षराण्युपासितो उद्गीत इति प्राण एवोत् प्राणेन हि उत्तिष्ठति वा गीर्वाचो हि गीर इत्याचक्षते अन्नं तमन्नेहिरं सर्वं स्थितम्. अथ खलु, अथ का अनंतर अवि प्रसिद्ध के लिए खलु अवि, उद्गीत अक्षराणि उपासित, उद्गीत इनके अक्षर क्या उपासना करे. उद्गीत जो उपास्य परब्रह्म ओंकार, उसका प्रतीक वाचक है. जिस ओंकार को उद्गीत शब्द से कहा गया, इसी उद्गीत के अक्षर का उपासना करें. अक्षराणी उपासित, उद्गीत अक्षर कहेंगे तो उद्गीत शब्द से ओंकार के अक्षर लेना है क्या, ऐसा शंका हो सकती है. इसलिए ओंकार नहीं, उद्गीत जो नाम है उसका अक्षर उद्गीत इति, इसलिए उद्गीत अक्षराणि उपासित कह करके स्पष्ट कर देते हैं. वो अक्षर कौन है, उद्गीत इति, उद्गीत यही अक्षर है. इसमें उन्हीं के अक्षर की उपासना क्या है, उसमें उद गी थ ऐसा विभाग है. तो उद क्या है, गी क्या है, थ क्या है, श्रुति स्वयं कहती. यहां तक तो क्या उद्गीत इति, उद्गीत यह अक्षर है. इन अक्षर की उपासना, उनका ही चिंतन. जिनके अक्षर इतने विशिष्ट नाम वाला है, इनके अक्षर का इतने उत्कर्ष है, ऐसे नाम वाले जो ओंकार पर ब्रह्म वो भी कितने श्रेष्ठ है, उनकी पूजा हो जाती है। नाम वाले की भी पूजा उपासना हो जाती, नाम के अक्षर की उपासना करने से। प्राण एव उत, प्राण को क्या है उत, उद्गीत में पहला है उत, उत क्या है प्राण ही उत है। प्राण क्यों उत हुआ, प्राण न ही उत्तिष्ठति, क्योंकि उत्तिष्ठति खड़ा होता है, स्थिर रहता है प्राण के द्वारा, प्राण की नहीं तो कोई खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं रह सकता है, इसलिए प्राण ही उत है। प्राण नहीं ही एकाति यस्मात, क्योंकि प्राण से उत्तिष्ठति, सब प्राण के बिना अप्राण हुआ तो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता है, गिर जाता है, लेट जाता है, समाप्त हो गया। प्राण से उत्तिष्ठति इसलिए उत हो गया प्राण। वा गीर और ऊद के आगे गी आया, गी ही क्या है वाघ, वाघ गी ही, गी का प्रथमांत कहता है गी वाघ, वाघ ही गी, वाघ की क्यों है तो वाच शब्द है, वाच उसको शब्द गीर शब्द से कहते हैं, वाच गी वाचो गिर इत्याचक्षते, क्योंकि वाघ को ही गिर शब्द से, गिर है शब्द ऐसे कहते, वाणी को ही कहते गिर, तो वाघ गी हो गया। उद्गीता में के गी है वो गी हो गया, गिर वाणी है, वाच वाघ ही है। और आगे थ रहा अन्नम थम, उद्गीता में थ क्या है अन्नम, अन्न क्यों कैसे थ हुआ, अन्न ही इदम सर्वम स्थितम, अन्न में ही ये सब स्थित है, अन्न में ही आश्रित है, पृथ्वी रूप अन्न में सारे कुल है, और जितने जो कोई अन्न से ही शरीर इंद्रिय प्राण सब स्थित है, अन्न हो गया थम। तो उद गी थ में प्राण वाग और अन्नम, ये तीन मिलकर उद्गीत हुआ, अन्नम इसे प्रतिष्ठित है। यहां जैसे तीन कहा उद्गीत, इसी प्रकार और भी कहेंगे उद का अर्थ, और भी अर्थ कहेंगे, गी का अर्थ, त का अर्थ कहेंगे, और अर्थ कहते समय कुछ समानता इसमें कही गई। उद क्यों है, क्यों प्राण से उत्तिष्ठति, गी हो गया वाच को गिर कहते, थम अन्न कहा क्योंकि अन्न में स्थ स्थित है, ये जैसे कहा गया इसी प्रकार श्रुति में उद गी थ के लिए अलग अलग पर्याय में अलग अलग कहेंगे, कुछ ना कुछ समानता है, ऐसे श्रुति में कहा गया कुछ ना कुछ समानता है, इसको लेकर के चिंतन करना है। द्यौरेव उद अंतरिक्षम गी ही पृथ्वी थम, आदित्यव उद वायु गीर अग्निस्थम, साम वेद उद यजुर्वेद गीर ऋग्वेद स्थम, दुग्ध अस्मे वाग दोहं यो वाचो दोहो अन्नवान्नाद भवति, ये एतान्येवं विद्वान् उद्गीत अक्षराणि उपास्त उद्गीत इति। द्यौरेव ऊत, द्यौ क्या स्वर्ग, ये ऊत है, द्यौरेव ऊत, द्यौ ही ऊत है, ऊत शब्द से पहले कहा था प्राण, अभी द्यौरेव ऊत, द्यौ स्वर्ग है ऊत, स्वर्ग के आगे जितने सब ऊत में आ जाएंगे, द्यौरेव ऊत। और अंतरिक्षम घी ही, द्यौ ऊ इसलिए हुआ स्वर्ग सब के ऊपर है, ऊत का अर्थ ऊर्ध ऊपर है, ऊत ऊपर सबसे है, तो देव हो गया उत, उच्च में स्थित होने से। अंतरिक्ष हो क्या गीर, अंतरिक्ष गीर इसलिए हुआ ये अंतरिक्ष आकाश में सब लोग का कहा, आकाश सब को निगल लेता है, गीरनाथ जिसे खाते ही निगल लेते हैं, सब लीन हो जाएंगे आकाश में, तो अंतरिक्ष गिरना लोगों का गिरण कर लेता है, अंदर ले लेता है। अब पृथ्वी थम, पृथ्वी हो गया थम, पृथ्वी तो है प्राणियों का स्थान है, पृथ्वी में सब चराचर जीव पर प्राणी है, इसलिए पृथ्वी थम उद्गीत हुआ, द्वितीय पर्याय हो गया। आगे तृतीय पर्याय में कहते हैं आदित्य है उत वायु गीर अग्निस्तम, और आदित्य है उत, आदित्य है ऊपर है, इसलिए ऊर्ध्व से आदित्य हो गया उत। दूसरे है वायु गी, वायु गी क्यों है, वायु है ये अग्नि आदित्य आदि को निगल लेता है, आगे संवर्ग विद्या में कहेंगे प्राण में पृथ्वी आदि के सब प्राण सब को निगल लेता है, प्राण में सब कुछ लीन हो जाते हैं, संवर्ग उपासना में आएगी, संवर्ग में प्राण में वायु में पृथ्वी जल तेज किसमें लीन होंगे, वायु में, वायु लीन होते इसी प्राण में सो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, सब इंद्र लीन हो जाते हैं, तो इसलिए प्राण में सब लीन होते अर्थात वायु सबको निगल लेता है, इसे निगल से गिर हो गया। और अग्निस्थम, अग्निस्थ हुआ क्यों, क्यों कर्म का अवस्थान होता है अग्नि में, जितने वैदिक कर्म सौत कर्म करते यज्ञ आदि अग्नि में आहुति देते हैं देवताओं के उद्देश्य से हवन करते, तो अग्नि साध्य कर्म होने से अग्नि हो गया थम, कर्म का अवस्थान कर्म की स्थिति अग्नि में। जो आहुत अग्नि होते हैं वो सौत कर्म कर सकते है, अग्नि आधान करना पड़ता है। जात पुत्र कृष्ण केश अग्नि नाद दीत, गृहस्थाश्रम में जाने के बाद पुत्र हो गया, जात पुत्र, जात पुत्र ऐसे से जात पुत्र, पुत्र होने के बाद कृष्ण केश बाल भी काला है, कृत्रिम से नहीं, वास्तव काला है, पका नहीं होगा, नहीं तो काला तो अंतिम तक भी काले करते रहेंगे मरने तक। कृष्ण केश अर्थात वृद्ध होने के पहले, बहुत लोग सोचते अभी क्या जल्दीबाजी है, थोड़े दिन के बाद हम साधन भजन करेंगे, बहुत लोग सोचते हैं ना, कोई लड़का कुछ करता है तो पिता माता समझदार सिखाते, अरे तू तो अभी लड़का है अभी क्या है, अभी तुम व्यवसाय करो तो करो, भजन साधन बाद में करना, वस्तु तो श्रेष्ठ काम पहले करना चाहिए उसके बाद में रखना चाहिए, बाद में करने के लिए जो श्रेष्ठ है उसको पहले करना चाहिए, शुभंश शीघ्रम, जो शुभ कार्य उसको पहले करना चाहिए, जो शुभ नहीं है उसको पीछे रखो। ज्यादातर सबसे श्रेष्ठ कार्य है परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन करना, उसको रखते थे बाद में करेंगे। जो कुछ किया जा सकता है युवावस्था में अभी करने का समय है, धन कमाते हैं तो ज्ञान कमाने के लिए भी समय है, वृद्धावस्थान से वृद्धस्ताव चिंता मग्न तहारे ब्रह्मणी को भी न लग्न, भगवान भाष्यकार ने कहा वृद्ध होने से चिंता बढ़ती है। सब कहते कि वृद्धावस्था में थोड़ी उम्र होने के बाद हम भजन करेंगे, बहुत लोग जाकर पहुंचते अपने कला शास्त्र में, कहते हमारा 5 साल है पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आ जाएंगे, कि नौकरी कोई करते हैं तो 5 साल पूरा हो गया फिर बाद में 1-2 साल नहीं आए, बाद में क्या हुआ को सरकार नौकरी चलेगी किन्तु वो दूसरी कंपनी वाले बुला लिया, जैसे कि अपनी इच्छा नहीं थी जबरदस्ती ले लिया, दूसरे काम करने शुरू कर दिया, फिर नहीं होता है ऐसे, कोई कहते वृद्धा अथवा होने के बाद हम आएंगे भजन करेंगे, अर्थात नौकरी जितने का नाम कर लिया पूरा कर लेंगे सब कुछ, बच्चे पत्नी सबको दे देंगे फिर हम आ जाएंगे तो यहीं रहेंगे, यही रहकर बसना करें, अर्थात हमारा रहने की व्यवस्था भी आपको करना है, धन कमा करके सब छोड़कर विरक्त है ना, सब धन छोड़कर आ जाएंगे, बाद में वृद्धावस्था में क्या करेंगे, एक बार सांप के शरण में रहेंगे, यही अध्ययन करेंगे, यही रहेंगे, अर्थात यही रहना और भोजन यही, तथा उसी के लिए भोजन करना है, ऐसे कुछ लोग भी कहते हैं, सब करने के बाद आएंगे तो यही रहेंगे, यही भोजन करेंगे, यही रहेंगे तो यही साधन भोजन करेंगे, वो कुछ नहीं होता है। जब प्राथमिक अवस्था में अभी जितने जिसके पास जो समय है जितने जल्दी हो सकता है उसमें लग जाओ, आगे करेंगे नहीं आगे चिंता बढ़ती है, व्यर्थ है किन्तु होती है चिंता। और इस शास्त्र में क्या भगवान भाष्यकार ने कहा वृद्ध तावत चिंता मग्न, बूढ़े को बहुत चिंता होती, कहते वृद्धावस्था में लोभ भी बढ़ता है, बिना कारण जाने की तैयारी कुछ लेकर जाना नहीं किन्तु उनको लोभ है, बच्चे पोते खर्च करते तो उनको सहना नहीं होता है, बहुत खर्च करते तो ये डरा दी इतने क्या है, यदि उनको कहेंगे 1,000 तो उनको तो अब लगेगा 1,000 हम तो 10 रूपया में भोजन कर लेते थे, तुम जाकर 1,000 क्या खर्च किया, तो कहे 10 रूपया 5 रूपया 1 रूपया, अब पहले से था, जब आपके अवस्था में भी अभी 10-20 साल के अंदर कितने फर्क हो गया, अब पहले कितने खर्च करते थे अब कितने खर्च होता है, ऐसे ही बढ़ता है, अब सुनने वाले को लगता है कितने खर्च कर दिया कितने खर्च कर दिया, वृद्धा होता है बसे कहते तुम चिंता नहीं करो बैठो आप क्यों भजन करो, उनका और कुछ नहीं यार इतने खर्च कर दिया इतने खर्च कर दिया, दिन भर बोलते रहेंगे जो आएगा उसको बोलेंगे इतने रूपया खर्च कर दिया क्या। वृद्धा होने पर चिंता बढ़ती है इसलिए भजन नहीं होता है पहले करना होता है। इसका शुरू था सप्तम शुरू हुआ था, ये हो गया व्यौरव ऊत अंतरिक्षम घी पृथ्वीतम आदित्य ऊत, आदित्य ऊत वायु घी, वायु हो गया घी इसलिए हुआ सबको निगल लेता है। अग्निस्तम अग्निसाध्य कर्म, तो अग्निसाध्य के लिए कहा गया जब पुत्र उत्पन्न हो गया बाल काला है तभी अग्नि आदान करे। रोज अग्निहोत्र करना है, सायं प्रातः आहुति देना है। जो अग्निहोत्र करता है अग्नि आधान कर रखा है वो गर्भपति अग्नि, उसी अग्नि से आहुत अग्नि ले करके अग्नि में हवन करना होता है। जो अग्निहोत्र नहीं अग्नि आधान रोज नहीं करता है, श्रौत कर्म करने के लिए उसका अधिकार नहीं है। एक अभी दिल्ली में हुआ था, कोई ये श्रौत यज्ञ कराए थे, रुपया देने वाले बहुत ही कर्म हो गया, किंतु अब यजमान कौन बनेगा? यजमान के जितने आए कि अग्निहोत्री होनी चाहिए, रोज अग्निहोत्र हवन करता है तो यजमान बनेगा। अग्निहोत्र करने वाले रोज नहीं है। अब विधिवत कोई ऐसे ही कुछ अग्नि जला के रोज स्वाहा स्वाहा करके आहुति दे दिया, ये अग्निहोत्र नहीं। अधिकार हो विधिवत मंत्र के साथ करता है तो अग्निहोत्री नहीं मिले तो दक्षिण से कोई आए ब्राह्मण जो अग्निहोत्री वो यजमान बने। रुपया देने वाले सब देखने दृष्टा बनकर सब रहा। अग्निहोत्र करने के लिए जो श्रौत कर्म करने के लिए अधिकारी भी सबके पास नहीं है। अग्निहोत्र करने पर दो सायं प्रातः आहुति देंगे और कुछ संध्या वंदना आदि कर्म करना पड़ता तभी। तो ऐसे अग्नि साध्य होता है कर्म, जितने श्रौत कर्म श्रुति विहित कर्म स्व अग्नि साध्य कर्म, इसलिए अग्नि को थम कहा कि सारे कर्म स्थित है अग्नि में आश्रित है। आगे अभी द्वितीय तृतीय पर्याय होगा चतुर्थ में। साम वेद एव ऊत यजुर्वेद गी ऋग्वेद स्तम। साम वेद हो गया ऊत, क्योंकि ऋचा में आरूढ़ करके साम का गान करते हैं, साम ऊपर हो गया, ऋचा में साम का आरूढ़ लगा करके बोलते हैं। यजुर्वेद गी, यजुर्वेद हो गया गी, यजुर्वेद गिरी है यजु से आहुति देते हैं, यजु मंत्र बोल करे अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। वो आहुति हवि को देवता लोग को निगल लेते, ग्रहण कर लेते, ग्रहण करते हैं। वस्तुतः देवता लोग को खाने का नहीं, ग्रहण करते तो ग्रहण हो गया, ग्रहण निगल लेते हैं। अग्नि में यजु मंत्र बोल करके आहुति देते हैं, देवता लोग ग्रहण करते, इसलिए यजुर्वेद हो गया गी। ऋग्वेद थम, ऋग्वेद हो गया थम, इसलिए आरूढ़ होता है साम, साम का आश्रय हो गया ऋचा, ऋचा में साम आरूढ़ से साम का आश्रय क्या हुआ? ऋचा, इसलिए थम हुआ। अभी उद्गीत अक्षर उपासना इस प्रकार बताया। तो आगे कहते दुग्धे अस्मयी वाक, वाक इनको इनके लिए फल देती है, वाग ही करता, वाग देने वाली अस्मयी उपासकाय दुग्धे उपासक के लिए दोहन करता है, फल देती है। क्या फल देते है? दोहम, दोह दोहन कर्म फल, यो वाचो दोह, वाह का जो दोह, वाह का दोहकन से वाक या शब्द, ऋग्वेदादि शब्द, ऋग्वेदादि शब्द साध्य फलन, ऋग्वेदादि शब्द शब्द जन जो फल है वो फल को देती है वाग, स्वयं वाग फल देती है। उसका फल है वेद अध्ययन करने पर उदात अनुदात सरित को समझने के बाद अपने आप उच्चारण कर सकते हैं। वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में वास करके उच्चारण अनुच्चारण करके पढ़ना पड़ता है। एक एक अक्षर शब्द को पढ़ते पढ़ते जो उदात अनुदात सरित कैसे उच्चारण करना, हाथ हस्त स्वर हस्त कैसे रखना सिखाते हैं। थोड़े थोड़े सीखते सीखते रुद्र आदि जो बोलते हैं सीखते समय कहीं यदि सिखाते ठीक ठीक सिखाने वाले वहां ऐसे ही बच्चे बैठ करके सीखते रटते रटते थोड़े थोड़े करके, फिर एक एक पाठ होने के बाद उसके जटा पाठ घन पाठ ऐसे पाठ आगे पीछे एक अक्षर आगे पीछे करते करते ऐसे करते सारे उपस्थित हो जाएगा। बोलते समय सब वर्ण शब्द दिखेगा, उदात अनुदात शब्द उन्हें मालूम है, तभी उदात अनुदात के अनुसार हाथ हिलाना पड़ता है। ये नहीं खाली हाथ हिलाने का नहीं, मंत्र बोलते समय उनको दिखता है यहाँ उदात या अनुदात, एक एक अक्षर एक एक शब्द आगे पीछे करते करते थोड़े बोलेंगे आगे थोड़े पीछे आएंगे थोड़े बोलेंगे आगे पीछे, इसे जटा पाठ घन पाठ आदि है। एक मंत्र को बोलने के लिए बोलते रहेगा आगे पीछे करेंगे पूरा उनके सामने। कोई व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्र कंठस्थ करने के लिए दस सूत्र कंठस्थ करें, दस सूत्र कंठस्थ करने के बाद एक दो तीन चार दस तक गया, आगे दस न आठ सात बोलकर एक तक आओ, ऐसा सुना फिर ऐसा सुना, ऐसे सुनाते सुनाते आगे जाने पर पूरा उपस्थित हो जाता है। फिर कहेंगे अमुक अध्याय का अमुक सूत्र बताओ तो सूत्र उपस्थित हो जाए, इतने कंठस्थ करते। गीता आदि कोई कंठस्थ करते तो एक एक करके कंठस्थ करते, फिर अमुक अध्याय का अमुक श्लोक बोलो, वो बोलेंगे आगे पीछे करते करते, तो ऐसे उपस्थित होना चाहिए। तो वेद पढ़ते समय इसे उच्चारण करके सीखते हैं, सीखते सीखते इतने हो जाता है तो उदात अनुदात उनको साफ सामने उपस्थित हो जाता है, उपस्थित हो जाते तो दुष्कंसा हस्त फैलाना होता है, अभ्यास होता है। तो ये पाठ साधिन उच्चारण फल उसका हुआ, अपने आप उच्चारण कर लेगा। पहले तो सामान्य उच्चारण नहीं कर पाता है, उदात अनुदात स्वर तो और कष्ट होता है। शब्द के उच्चारण करते समय बहुत नियम है, उस नियम के अनुसार उच्चारण करते करते अभ्यास होता है। इसलिए उच्चारण करते समय थोड़े ध्यान से सबके साथ मिल करके उच्चारण करने से कहीं कहीं अपनी त्रुटि का मार्जन हो जाता है। अपने को पता नहीं चलता, सबको लगता हम ठीक बोलते हैं, गलती हो जाती है। इसे सबके साथ मिल करके बोलने से शुद्धि होती है। ऐसे पाठ करते करते उसका जो फल, उसको ये फल मिलता है। और ये तो सामान्य फल है, और मुख्य फल तो ओंकार अक्षर उद्गीत की उपासना है। जिसके नाम के अक्षर की उपासना का फल बताया, ओंकार कितने श्रेष्ठ है उसकी स्तुति के लिए अंतर्गत मध्य मध्य में फल कहते हैं। मुख्य फल है उद्गीत ओंकार उपासना, उस उपासना का फल है हिरण्यगर्भ प्राप्ति आदि। और उपासना फल जो नहीं चाहता है, उपासना का क्या फल होगा? अंतकोण शुद्धि के द्वारा परब्रह्म साक्षात्कार है फल, मुख्य तो वही है। सारे कर्म उपासना का वही फल है, केवल बीच में जो फल कहते जिसकी कामना है, कामना का फल प्राप्त करेगा। और जो करता है कामना से भी प्रारंभ करे, कभी कभी काम्य कर्म का आरंभ प्रारंभ कर दिया कामना से, किंतु कर्म करते करते थोड़े अंतकोण शुद्ध होता है, विचार करता है इसका फल क्या मिलेगा, मुझे स्वर्ग जाना है, कितने साल रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसको वापस आना, फिर विचार करेंगे इतने करेंगे तो फिर आएंगे तो फिर कहां जाएंगे, वापस तो आएंगे, वापस आने पर कहां आएंगे, मर जाने के तो आएंगे तो आने पर कोई यहां पूछेगा, जब मर गया 10,000 के वर्ष हो गए, 1,000 क्या, 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद हो, फिर जब वो आए घर में बच्चे भी डरेंगे, पत्नी बच्चे सब कहेंगे भूत भेत आया, डरते रहेंगे, कोई घर में घुसाएगा, अच्छा दूसरे वेश बनाकर आएगा, कौन पूछेगा। कभी यदि कोई मनुष्य बनकर आए, पशु बनकर आए, कोई आएगा, कौन उसको पूछेगा, भगाएंगे, तो फिर कहां जाएंगे। तो विचार करते करते उसका विवेक होता है, जब कर्म करता है अंतकोण शुद्ध होता है। देवताओं को हवन करना, शुद्धि सत्वगुण बढ़ने से ही कर्म होता है, इसे जब करते सत्वगुण बढ़ता है, ये विचार आता है इसका क्या फल, उसके बाद कहां जाएंगे, मरने के बाद कहां, फिर कहां जाएंगे, फिर विचार करते इसे करना है कि अभिशत ये जन्म मरण जाना आना ये समाप्त कैसे होगा, फिर विचार करते तो परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का ज्ञान हो सकता है यदि परमात्मा का साक्षात्कार करें। परमात्मा ज्ञान साक्षात्कार का क्या फल, विचार भी बहुत नहीं करते तो भी लगता है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो कितना अच्छा है। फिर इसके लिए सारे ये उपासना कर्म का जो फल है, तो फल हमको नहीं चाहे, हमको तो केवल परमात्मा साक्षात्कार हो जाए। ये जब विवेक होता है तो काम्य कर्म आरंभ करके बीच में यदि कामना समाप्त हो गई, वही निष्काम कर्म हो गया। इसलिए पहले कम से कम सकाम से कर्म में लगा देते हैं। कोई कामना करता है तो चलो ये पाठ करो, ये करो, हो जाएगा सब। कोई कहते हैं कुछ रोग है, धन का अभाव है, कुछ ना कुछ दुख बताते हैं, बताते तो पाठ करो, पाठ में लगाओ, सकाम से पहले करो। कामना से करते करते भी उसके अंदर विवेक होता है, समझ आता है, कभी निष्काम करने लग जाएगा। किंतु कम से कम शास्त्रीय मार्ग पर चले, जिसको धन अभाव है वो सोता है चोरी करके लूट करके ले आएगा, इसको कहीं तो इस कर्म करो तुमको धन मिल जाएगा, लगा दिया कर्म में स्तोत्रपाठ करो धन मिलेगा, और करेगा तो मिलेगा। ऐसे है कुछ काम करने से, कामना से करने से कुछ फल मिलता है। और यदि लग गया इस शास्त्रीय मार्ग पर चलना शुरू कर दिया तो आगे उसका सुधार हो जाता है। इसलिए यही शास्त्रों का तात्पर्य महापुरुष भी कराते हैं, बाह्य प्रवृत्ति से हटा करके शास्त्रीय मार्ग पर लगाना। शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर कल्याण अवश्य ही होगा, इसलिए अशास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग पर चलना। ये जो बीच में से कुछ कुछ फल कहते, किसी फल के लिए कोई करे तो कोई बात नहीं, उपासना पहले प्रारंभ करे, और प्रारंभ करने पर अपने आप ही विवेक होता है, फिर समझता है। जो कुछ सद्गुण संपन्न नहीं हो, सात्विक भोजन सत्संग सत्सात श्रवण थोड़े प्रारंभ नहीं करे उसको यदि कहेगा तुम ऐसा कर कामना छोड़ो नहीं होगा। पहले मार्ग पर लगाए, मार्ग पर लगने के बाद फिर कहने से थोड़े थोड़े फिर विवेक होता है, फिर ग्रहण होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश शुरू से नहीं करते, शुरू से करेंगे तो कोई ग्रहण नहीं हो सकता है। और सबको मालूम है तत्वमसी, तो सबको मालूम है, बोलना सिखाना नहीं पड़ता है। किन्तु उसका अर्थ क्या है, कैसे ज्ञान होता है, यहां भी बड़े अधिकारी को उपदेश करते हैं तो भी बार बार कहना पड़ता है। समय आएगा तो देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, वही बार कहेंगे तत्वमसी, फिर कथा फिर मुझे बताइए, फिर वही बताएंगे। बार बार वही तत्वमसी कहेंगे तो नौ बार कहने से क्या होगा, हजार बार भी कहे तो क्या हो जाएगा, क्या विशेष है? तो विशेष है, इसलिए धीरे धीरे करके क्रम से जाना होता है। और इसमें स्पष्ट करेंगे इंद्र को भी कैसे भ्रम हो गया, तो भ्रम हो जाता है। अंतकोण शुद्धि के लिए पहले आवश्यक है सन्मार्ग में चले, इसलिए पहले अंग में फल, अंग अर्थात ओंकार के उपासना है, प्राण उपासना है, वो मुख्य फल तो उद्गीत ओंकार उपासना, किसी मध्य में अक्षर की उपासना, किसी गुण से उपासना, रसतमत्व आपति समृद्धि गुण से उपासना। इसी प्रकार यहां भी अक्षर नाम के अक्षर उद गी थ एक एक को क्या क्या कहा गया, प्रत्येक पर्याय में क्या उद कहा, फिर गया गी क्या थ, द्वितीय पर्याय में क्या, तृतीय में क्या, ऐसे मन लगाकर समझे। यदि ये सब उस दिमाग में रखने के प्रयास करें, उद गी थ पहले क्या कहा गया, द्वितीय क्या, तृतीय में क्या, चतुर्थ पर्याय में क्या, इसको दिमाग में रखे। ये रखने के लिए मन जितने एकाग्रता के बिना नहीं रहेगा। जप में बैठ जाओ एक घंटा, कोई पता नहीं किसको पता नहीं चले, आप जप करते हो क्या, विषय चिंतन करते हो, बैठ जाओ ध्यान में बैठ जाओ, मन भागता रहता है। किंतु दिमाग में रखकर बताओ, कोई है काल को बताएंगे उद गीत हमें क्या क्या कहा गया, उद क्या है, गी क्या है, नहीं काल को बताना, उद गी अर्थ पहले पर्याय में क्या, द्वितीय पर्याय में क्या, तृतीय में क्या, चतुर्थ में क्या, इसको बता दे। उद पहले क्या कहा गया, गी किसको कहा, अभी नहीं बोलना, गी किसको थ किसको, फिर द्वितीय में उद गी थ, तृतीय में, पूरा करके कहना, ऐसे विचार तभी उपासना होती है, तभी पता चलता है मन कितने एकाग्र है। खाली बैठ कर जप करते तो मन भागता रहता है, जप भी चलता रहता है, किन्तु ये दिमाग में रखने के लिए पूरा सामने रखना पड़ेगा, एक एक देख विचार करके मन लगा, तब देखो मन कितने एकाग्र होता है। इसलिए हम कहते श्लोक याद कराने लगा देते, श्लोक जब कंठस्थ करेगा मन इधर उधर भागेगा तो श्लोक कंठस्थ होगा नहीं, पूरा लगा करके एक एक श्लोक, एक पाद दूसरा पाद तृतीय पाद, फिर तैयार हो गया फिर बोलते समय भूल जाते हैं। यही है उपासना, अभी यह हो गया फल बता दिया। आगे अन्नवान अन्नादो भवति ये एतानि एवं विद्वान उदित अक्षराणि उपास्त उद्गीत इति। अन्नवान अन्नादो भवति, अन्नवान का अर्थ बहुत अन्न वाला होता है, जिसके पास अन्न बहुत ही है दूसरे को दे सकता है, अन्न नहीं तो अन्न कैसे देगा, इसलिए अन्नवान। पहले सब ऐसे करते थे, बहुत अन्न हमारे पास रहे अथवा उसका साधन रहे जो हम अन्य को अन्नदान कर सके, कोई अतिथि आए तो हम इसको भोजन दे सके, और कोई ऐसा करते आगे आएगा तो अन्न दान के लिए बहुत स्थान में मकान बना करके सब व्यवस्था करते, तो हमारे अन्न सब रास्ता में जा रहे, अभी भी कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के समय जाते थे, रास्ता में कैसे खिलाते हैं विभिन्न स्थान में बैठ के, जहां पानी पीना पानी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो लोग कैंप लगा करके बैठ रहे, बुला बुला करके खिलाते हैं। अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो लोग भक्त लोग जा करके वहां रहते हैं, रह करके कम्बला दे देते सोने के लिए, जितने पास अपने हो रुपया भी क्या हो, वस्तु के बिना क्या चलेगा, रुपया करोड़ों रुपया लेकर जाओ तो कम्बल भी देते हैं, सोने के लिए रहने की व्यवस्था है, जहां व्यवस्था अभी दोनों अन्य लोग करते, भोजन भी देते हैं, विभिन्न प्रकार भोजन खिलाते, अभी भी करते ऐसा बहुत बहुत स्थान में। तो ऐसे प्राचीन परम्परा है, विभिन्न स्थान में स्थान बना करके तीर्थयात्रा अथवा कोई भी हो, कोई भी भूखे हो पहुंच गया उसको भोजन मिल जाए। तो इसलिए अन्नवान भवति मतलब बड़ा फल है कि अन्न जिसके पास है, जिसके पास है वो दे सकता है, जिसके पास नहीं वो कैसे दे जाएगा। इसे उपासना करेगा तो उसके पास ये सामर्थ्य होता है अन्नवान भवति। और एक अन्नाद भवति, अन्नाद अन्नम अतीत अन्नाद, भोजन कर सकता है, भोजन कर सकता है, सब तो भोजन करते हैं, किंतु अन्नाद भवंति लो, अन्न खा सकता है, अर्थात अग्नि दीप्त अग्नि भोजन खाकर पचा सकता है। बहुत भोजन खाकर पचा नहीं सकता तो खा नहीं सकते, तो खाते समय बड़ा कठिन है। बहुत खिलाएंगे अपने खाते समय, ये खाएंगे आधे रोटी खाएंगे, वो चीज ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कोई सब्जी खाएंगे तो चटनी जैसे इतनी सब्जी लगकर थोड़ा खाएंगे, कोई खा नहीं पाते, कोई खा करके हजन। तो ये भी है कि पुण्यकर्म का फल है, जो अन्न खा कर पचा लेता है ये पुण्यकर्म का फल है। इसलिए किसको भोजन खिलाते समय यदि अधिक खाता है तो बहुत देखो पुण्यकर्म का फल उसको खिलाओ।